الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين. ولعنة الله دائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مجلس کے اقتدام میں ہم سب مل کر امام زمان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بابا سے بلند نعرہ صلوات. محبت حسین کے عنوان کے تحت اس عشرہ اول کی آج آٹھویں مجلس آپ سب کی سماعتوں کی نظر. تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا اور اس کائنات کو پال رہا ہے، اور اس خدا نے اب ہدایت کے لیے 124,000 انبیاء بھیجے اور 14 معصومین کو بھیجا تاکہ ہم ان کی اطاعت کر کے، ان کو فالو کر کے رب ذوالجلال کی اطاعت کا حق ادا کر سکیں. اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ اس نے یہ حکم دیا، قرآن میں موجود ہے، جو رب ذوالجلال کی اطاعت کرے گا تو خدا اس کی جزا میں اسے بہشت عطا کرے گا. دنیا میں ہم اللہ کے حکم پہ چلیں تو جزا کیا ہے؟ اللہ ہمیں بہشت میں جگہ دے گا، اور یہ اطاعت کی توفیق بھی ہمیں خدا دیتا ہے. اگر یہ خدا اطاعت کی توفیق نہ دے تو ہم رب ذوالجلال کی اطاعت نہیں کر سکتے. چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، مجلس میں وہ آتا ہے جسے وقت کا امام نام لے کے پکارے. اللہ کا احسان ہے کہ وقت کے امام نے ہم آپ سب کو نام لے کے پکارا، آج ہم مجلس اعظم میں موجود ہیں اور انشاءاللہ اس عشرہ اول میں رہیں گے. ایک چھوٹی سی بات جو ابتدا کہنی تھی وہ ابھی کہہ دوں. आशूर के दिन ये मजलिस सुबह 8 बजे शुरू होगी। हमेशा की तरह आशूर के दिन ये मजलिस जो है 8 बजे शुरू होगी। तो अल्लाह का एहसान है कि इमाम जमाना ने हमारा नाम लिया, तो आज हम इस फर्श अज़ा पर मौजूद हैं। और रब्बुल-जलाल कुरान पाक में सूरह ताहा की आयत नंबर 42 आयत का नंबर रब्बुल-जलाल कह रहा है, ला तनिया फी जिक्री, मेरे जिक्र में सुस्ती मत किया करो। क्या मतलब? कभी कभी ऐसा होता है मस्जिद में हमने सुना फला जिक्र का ये फायदा है, कहीं किसी आदमी ने हमसे, किसी खातून ने हमसे कहा मैंने ये पढ़ा था तो मुझे ये फायदा हुआ, आप भी पढ़िए, हम भी बहुत जोश में आए पढ़ना शुरू किया, मगर कुछ अरसे बाद वो जिक्र हमसे छूट जाता है। और मासूमीन ये कहते हैं कोई भी जिक्र शुरू करो, कुरान पाक में सूरह तौबा में अल्लाह नमाज वित्र नमाज शब पढ़ने वाले जो नमाज शब में इस्तग़फ़ार करते हैं अल्लाह उनकी तारीफ कर रहा है, ये लोग अल्लाह से मुखातिब होते हैं रात के अंधेरे में और इस्तग़फ़ार करते हैं अपने लिए और मोमिनीन के लिए। तो जब इस आयत के बारे में छठे इमाम से पूछा गया मौला क्या मतलब, तो छठे इमाम कहते हैं अगर कोई एक साल तक नमाज वित्र में पढ़ते हुए अल आफ कहते हुए अपने गुनाहशदारों के, बच्चों के, पड़ोसियों के, जिन जिन को आप जानते हैं, कम से कम 40 नाम ले, ज्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं है, तो आप अगर उनका नाम लेके उनके लिए मगफरत की दुआ करते रहे कम से कम एक साल तक, तो फिर आप इस आयत का मिज़दाक ठहरेंगे कि अल्लाह आपकी भी तारीफ कर रहा है। यानी किसी भी नेकी पर इमाम मासूम कहते हैं कम से कम एक साल तक तो इस्तिकामत दिखाओ कि उस पर पाबंद रहो, पाबंद रहेंगे तो फिर आदत हो जाती है, तो जिंदगी के आखिरी सांस तक हम इन अज़कार को पढ़ते रहेंगे और हम जिक्र इलाही के फवाइद से बहरामंद हो सकेंगे। मैंने आपके सामने 2 दिन पहले कहा कि अल्लाह कहता है हर लम्हे खुदा का जिक्र करो, मगर 5 मौके ऐसे हैं जिस पर खुदा का जिक्र कभी नहीं भूलना। परसों की मजलिस में कहा मैंने बाजार में दाखिल होते वक्त, कल मैंने आपके सामने बयान किया इरादा करते वक्त अल्लाह को जरूर याद रखो, और आज परवरदिगार आलम कहते हैं जब गुस्सा आ जाए तो गैज़ो गज़ब के वक्त अल्लाह को याद करो। अच्छा कैसे याद करें? बच्चे बहुत छोटे होते सवाल करते हैं ऐसा कैसे हो सकता है हमें गुस्सा आ जाए और उस वक्त हमें अल्लाह याद आ जाए? का इसीलिए मासूम ने कहा है जब गुस्सा आ जाए तो अपनी हालत बदल लो, अगर खड़े होकर गुस्सा आया तो बैठ जाओ, अगर बैठे हुए गुस्सा आए तो एक ग्लास में आधा ग्लास या एक घूंट पानी पी लो। क्यों? आग बुझती है पानी से। अब तुम्हारे अंदर जो गुस्से की आग है इसको चाहते हो बुझाना, गुस्से करने की ताकत भी है और तुम समझते हो तुम सच्चे भी हो, मगर अल्लाह कहता है गुस्से का घूंट पी जाओ, तो पानी पी लो गुस्सा बुझ जाए। और अगर कुछ भी नहीं है, गुस्सा आ रहा है खड़े होके बैठे जमीन पे बैठ जाओ। क्यों? हमारे उस्ताद कहते थे आग पे मट्टी डालो बुझ जाएगी, आग पे पानी डालो बुझ जाएगी। तो क्योंकि गुस्से के वक्त इंसान के अंदर एक आग होती है, उसको कैसे खत्म किया जाए? या तो पानी पी लो, आग बुझ जाएगी, गुस्सा उतर जाएगा। यानी अगर गुस्सा उतरा, अगर बैठे हो जमीन पे बैठ जाओ, जमीन से मुत्तसिल हो जाओगे गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो अल्लाह कहता है जब तुम्हें गुस्सा आए उस वक्त अल्लाह को याद करो। और रसूल खत्मी मर्तबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा रसूल इस्लाम कहते हैं अल्लाह ने मुझसे पहले एक नबी पर वही की थी और खुदा ने कहा था मेरे बंदों से कह दो अगर वो अपने गुस्से के वक्त मुझको याद करेंगे तो मैं अपने गजब के वक्त उनको याद करूंगा। क्या मतलब? हमें गुस्सा आया, हमने सोचा कि नहीं अल्लाह को गुस्सा पसंद नहीं, हम 14 मासूमों के मानने वाले हैं, उन मासूमीन के सदके में हम गुस्सा पी, मासूमीन के सबसे मौला ने सिखाया, बार बार मौला ने करके दिखाया, हम गुस्से का घूंट पी लेते हैं। अच्छा, हमने अपने गुस्से में खुदा को याद किया, गुस्से का घूंट पी गए। अल्लाह कहता है जब मुझे गजब आएगा मैं तुम्हें याद करूंगा। क्या मतलब? अल्लाह को गुस्सा क्यों आता है? हम और आप जब अल्लाह की नाफरमानी करते हैं ना, कभी किसी गुनाह को मामूली मत समझिए, बड़ा गुनाह हो छोटा गुनाह, गुनाह क्यों गुनाह है? इसलिए कि अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, अल्लाह ने मना किया था हमने कर दिया, गिबत नहीं करो हमने कर दी, झूठ नहीं बोला, हमने बोल दिया, किसी का दिल ना दुखा, हमने दुखा दिया, तो कोई भी गुनाह करेंगे तो अल्लाह को गुस्सा आएगा। और जब अल्लाह को गुस्सा आएगा तो अल्लाह कह रहा है, अगर तुमने अपने गुस्से के वक्त मुझे याद रखा तो मैं अपने गजब के वक्त, जब खुदा को गुस्सा आएगा हमारे किसी अमल पर, तो अल्लाह कह रहा है मैं तुमको याद करूंगा, यानी तौबा की तौफीक देगा कि हम तौबा करके गुनाह से बरी हो जाए। सलावत भेजिए बाबा। तो तीसरा मौका जब अल्लाह के जिक्र को हमेशा याद रखना है वो ये, जब गुस्सा आए तो हम अल्लाह को याद करें। अच्छा, अल्लाह को याद करें, कुरान में ऐसी बहुत सारी आयतें हैं कि अगर आप उन आयतों को पढ़ने लगेंगे तो अगर किसी और को भी गुस्सा आएगा तो वो गुस्सा उतर जाएगा। और मैं आपके सामने रोजाना बयान कर रही हूँ, जो जिक्र इलाही का फायदा है वही फायदा मोहब्बत हुसैन रखने का है। आज 8 मुहर्रम है, जिक्र इलाही का एक फायदा ये है, अल्लाह वुसत कल्ब अता कर देता है। अरबी जबान में वुसत कल्ब को कहते हैं शरे सदर, सीना कुशादा करना, और अगर मैं आसान सी उर्दू में कहूँ दिल बड़ा हो जाता है। हम कहते हैं ना, कोई बहुत अच्छे काम कर रहा हो इसका दिल बहुत बड़ा है, कोई किसी को बुरा भला कह रहा हो जवाब नहीं दे रही, इनका दिल बहुत बड़ा है भाई, ये बर्दाश्त कर सकती है। उर्दू में हम जिसे दिल बड़ा होना कहते हैं, अरबी में उसे कहते हैं शरे सदर, दिल का कुशादा हो जाना। और ये वो नेमत है जो नबियों ने अल्लाह से मांगी है। हजरत मूसा ने सूरह ताहा में अल्लाह से कहा, रब्बे शराली सदरी व यस्सिरली अमरी, बारेलाहा मेरे सीने को कुशादा कर दे, मेरे काम को आसान कर दे। काम क्या था? फिरौन के दरबार में जा रहे थे। तो हम सबको अपनी नमाजों में ये मांगना चाहिए, अल्लाह हम सबके दिल को कुशादा कर दे। और दिल कैसे कुशादा होगा? जब हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे तो अल्लाह हमारे दिलों को कुशादा कर देगा, शरे सदर अता कर देगा। एक रिवायत बयान कर दूं ताकि बात वाजे हो जाए। किताब इंसान साज वाकया की 3री जिल्द में ये वाकया मौजूद है। एक शख्स था बहुत गरीब था, बावजूद कोशिश के उसके घर में अक्सर फाके रहते, रोजगार नहीं मिल रहा, घर में कोई सामान नहीं है, पकाने का भी कोई सामान नहीं है। एक मरतबा ऐसे ही आया कि 2-3 दिन का फाका था, क्या करें। बीवी ने घर में एक रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ था, लाके शौहर को दिया कि इसको बेच दो, अगर एक दिरहम भी मिल गया तो एक रोटी मिल जाएगी, वो रोटी हम दोनों खा लेंगे एक रोटी में। शौहर ने कहा ठीक है। रस्सी का टुकड़ा लेकर गया, जब बाजार में निकला तो देखा बीच बाजार में रश लगा हुआ है। करीब गया, देखा 2 लोग आपस में लड़ रहे, मार कुटाई हो रही है। क्यों लड़ रहे हो? इसने मुझसे कर्ज लिया था, एक दिरहम वापस नहीं किया। एक दिरहम पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है और उसके हाथ में रस्सी का टुकड़ा बेचकर 1 ही दिरहम आएगा। रस्सी का टुकड़ा बेचा था, 1 ही दिरहम आएगा। अब जब लोगों ने कहा इस कदर मारपीट जो हो रही वो 1 दिरहम की वजह से, इसके पास शरे सदर थी, दिल बड़ा था, वुसत कल्ब थी। इसने क्या किया, वो 1 दिरहम जो बड़ी मुश्किलों से मिला था वो उनको दिया, ये लो दिरहम और आपस में गले लोगों सुलह करो और लड़ाई झगड़ा खत्म करो। उससे उनके दरमियान सुलह करवा दी। आज के जमाने का अगर कोई होता, बाजार में कोई किसी का सर भी फाड़ रहा होता तो क्या कहता, मुझे क्या, आपस में लड़े लड़ते रहे, मैं तो खुद गरीब हूँ, मेरे पास तो 1 ही रुपया है। हम तो यही कहते हैं ना, क्यों, वुसत कल्ब नहीं है, अल्लाह से मांगी अल्लाह शरह सा। अच्छा, उसने क्या किया, वो 1 दिरहम दे के लड़ाई झगड़ा खत्म करवा दिया और खाली हाथ घर आ गया। बीवी ने पूछा खाली हाथ आयो, कहा बाजार में झगड़ा हो रहा था 1 दिरहम पे, मैंने वो अपना दिरहम देके और झगड़ा खत्म करवा दिया, सुलह करवा दिया। बीवी ने कहा अच्छा मैं घर में देखती हूँ कोई और चीज बेचने के लायक हो तो उसको बेच के ले आओ पैसे। घर में एक पुराना लिबास पड़ा था, वो लेकर आई जोजा और कहा कि ले जाओ बाजार में, अगर कोई खरीद ले तो बेच दो, शायद आज हमारे कुछ खाने का बंदोबस्त हो जाए। शौहर वो पुराना लिबास लेकर गया बाजार और बाजार में देखा एक मछली बेचने वाला है, वो बासी मछली बेच रहा है। अब बासी मछली तो कोई नहीं खरीदते ना, वो गिल्स उठा के देखते हैं, अगर सुर्ख है तो ताजी है। अब वो जानता था ये मछली बासी है, कोई लेगा नहीं। उसने कहा देखो मछली वाले से बात की, हम एक सौदा करते हैं, मेरे पास एक पुराना लिबास है ये तुम रख लो और ये बासी मछली मुझे दे दो, क्योंकि अगर ये नहीं बिकी तो खराब हो जाएगी। उसने कहा ठीक है, उसने पुराना लिबास रख लिया और बाकी मछली इसको दे दी। ये मछली लेके घर आया और ज़ौजा से कहा आज इसी को पका लो। मछली का पेट चाक किया, उसमें एक कीमती हीरा मौजूद था। वो हीरा निकाला और बाजार में गया। जब उस हीरे को बेचा तो थैला भर के उसको रकम मिल गई। बहुत कीमती हीरा था। जब थैला भर के रकम मिल गई, लेके घर आया, अभी घर में बैठा ही था कि एक फकीर की सदा आई, अल्लाह ने जो तुमको अता किया है उसमें से मुझे भी अता करो, मैं गरीब हूं। मैं सोचती रही अगर आज के जमाने कोई होता तो दोनों कुंडियां चढ़ा देता, इसे कैसे पता मुझे मिला है, मांग रहे अभी अल्लाह ने दिया और ये मांगने चले आए, और बहुत बहुत देता तो एक रुपया दे देता। हाँ, लेकिन उसके पास शरह सदर थी। क्या किया, जब फकीर की सदा को सुना, दरवाजा खोला, फकीर को अंदर बुलाया, उसके सामने वो रुपए का थैला रख दिया, कब मेरी जरूरत तो खुदा ने पूरी कर दी है, तेरी जो जरूरत है इसमें से निकाल ले। उसने मुट्ठी भर के निकाले नोट और घर से बाहर गया। घर से बाहर गया, फिर पलट के आया और आके वो नोट वापस डाले, कहा मैं इंसान नहीं हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, अल्लाह ने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए भेजा था, और अल्लाह ये कहना चाहता है ये तुम्हारी नेकी है जो तुमने एक दिरहम देके मोमिनों को लड़ने से बचा लिया, इसलिए अल्लाह ने तुमको ये अज्र अता किया है। सलावत पढ़ी बाबा की। देखिए हमारी वुसअत कल्बी का कब पता चलता है, अगर किसी ने कोई तोहफा दिया है और अब हम आगे किसी को वो तोहफा देना चाह रहे, तो बच्चे फौरन अरे आप इतना कीमती तोहफा दे देंगी, कोई जरूरत नहीं आपको देने की, बच्चों की बात है, हमारे आपके बच्चे, कोई कीमती चीज है हम किसी की शादी पे देना चाहते हैं, मेरे पास तो है ना, मैं दे दूं, अरे आप इतना कीमती तोहफा उनको दे देंगे, कोई जरूरत नहीं आप रखें। यहीं से वुसअत कल्ब का पता चलता है, जो अल्लाह ये दे सकता था क्या वो अल्लाह इससे बेहतर नहीं दे सकता। उसने एक दिरहम दिया था, उसको इतना मालोदर खुदा ने दे दिया, तो हमारे पास अगर वुसअत कल्ब हो और हमने अपने बच्चों में आदत डालनी है, ये कहना है जो कुछ खुदा की राह में दोगे खुदा फौरन तुम्हें पलटा के इससे बेहतर देगा, तो जिस तरह जिक्र इलाही करने से वुसअत कल्ब आ जाती है, इंसान के अंदर शरह सदर आ जाती है, ऐसे ही हुसैन की मोहब्बत दिल में रखने से शरह सदर आ जाती है, दिल बड़ा हो जाता है। कैसे, किताब मौजज़ात इमाम हुसैन, उसने एक रिवायत है, एक शख्स रहता था जो करबला से चंद मील के फासले पे था और गरीब था, उसके पास एक गधा था सवारी के लिए, वो क्या करता था हर शबे जुमा, एक शबे जुमा उसी गधे पे सवार करके अपने बाप को इमाम हुसैन की ज्यारत के लिए लाता था और अगली शबे जुमा उसी गधे पे अपनी माँ को सवार करके लाता था और खुद पैदल चलता हुआ आता था गधे की बाग उसको थामे। एक शबे जुमा ऐसी आई कि शदीद तूफान था, आंधी चल रही थी, शदीद सर्दी थी, बाप की बारी थी, उसने बाप को गधे पे बिठाया, बाबा आज आपकी बारी है, आज आपको इमाम हुसैन के रोजे पे ले चलूंगा। जैसे ही बाप को बिठाया माँ ने रोना शुरू कर दिया, क्या हुआ अम्मा, मेरी तबीयत बता रही मैं अगले हफ्ते जिंदा नहीं रहूंगी, मुझे लगता है बस ये आखिरी हफ्ता है मेरी जिंदगी का, हो सके तो मुझे ले चलो। अब बेटे ने जो माँ की बात सुनी और माँ रो रही है, करे तो क्या करे, एक ही गधा है उस पर बाप को सवार करा दिया, ना माँ को नाराज करना चाहता है ना बाप को। आजकल हमारे माशरे में क्या है, जोर से बात करना कोई बात ही नहीं है, माँ बाप को 11-12 साल के बच्चे माओ से कहते हैं आपको नहीं पता आप घर में रहती हैं, हमें पता है, बच्चे माओ से कहते हैं हमें पता है, और जोर से बात करना, जबकि खुदा कुरान में कह रहे हैं माँ बाप के सामने उफ नहीं करना, और छठे इमाम कहते हैं उफ से छोटा कोई जुमला ही नहीं है, उफ इससे छोटा कोई जुमला ही नहीं है, वरना अल्लाह वो कहता माँ बाप के सामने उफ ना करो। आज हमारे माशरे में बच्चों का जबान चलाना, बच्चों का ऊंची आवाज में बोलना, माँ बाप को दलीलें दे के कायल करना, हम सही कह रहे हैं, मगर वो शख्स चूंकि हुसैन से मोहब्बत रखता था, हर शबे जुमा मौला के रोजे पे जाता था, ऐसी मोहब्बत थी कि दिल कुशादा था, ना माँ को नाराज करना चाहता था ना बाप को, बाप को उसी गधे पे बिठाया हुआ था, माँ को अपने कंधों पे बिठाया। रात का वक्त है, माँ को कंधों पे बिठाया और बड़ी मुश्किल से, आंधी भी चल रही है, सर्दी भी बहुत शदीद है, दोनों माँ और बाप को लेके हरम में दाखिल हुआ। जब हरम में दाखिल हुआ तो हरम के अंदर बहुत से लोग बैठे दुआएं पढ़ रहे थे। एक शख्स दुआ पढ़ रहे थे, हुसैन बिन मशकूर, आलिम थे। हुसैन बिन मशकूर ने जब इसका चेहरा देखा तो हैरान हो गए। क्यों हैरान हुए? उन्होंने कल रात ख्वाब में यही मंजर देखा था। वो ख्वाब में देखते हैं कि जवान आया हरम इमाम पर, इमाम को सलाम किया और इमाम ने मुस्कुरा के उसके सलाम पे जवाब दिया। अब जब आज शबे जुमा आई और वही मंजर जो ख्वाब में देखा था वो देख रहा है, ये शख्स आया है अपने माँ और बाप को लिए हुए, ज़ईफ माँ बाप को पकड़े है और इमाम को सलाम कर रहा है। अच्छा, ख्वाब में तो इमाम हुसैन का चेहरा देखा मगर अब नजर नहीं आ रहा। उसने इमाम हुसैन को सलाम किया, मुस्कुरा के सलाम किया। जब वो पलटा जरी के पास से तो ईशा हुसैन बिन मशकूर पीछे पीछे, कहा क्या बात है? कहा मैंने तुम्हें कल ख्वाब में देखा था और मैंने देखा था कि इमाम हुसैन तुमको मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं। कहा तुमने सही देखा था। अब जब भी मैं शबे जुमा आता हूँ, इमाम हुसैन के हरम में इमाम को सलाम करता हूँ, इमाम मुझे दिखाई भी देते हैं और मुस्कुरा के जवाब देते हैं। मौला मुस्कुरा के जवाब क्यों देते हैं? इतनी वुसते कल्ब है इसके अंदर कि ये तकलीफें सहता रहा मगर ना माँ को नाराज किया ना बाप को नाराज किया, दोनों को साथ लेके माँ को कंधे पे उठा के जरिए इमाम पे सलाम के लिए आ गए। सलावत भेजिए बाबा। और ये एहसान है मौला हुसैन का। ऐसी सलवात मत पढ़िए लगे कि थक गए, ऐसी सलवात पढ़िए जैसे हुसैन ही पढ़ते हैं। खुदा हम सब की कब्रों को नूरानी करे। तो हुसैन इब्ने अली ने अजरी दिया कि जहां जहां मेरी मस्जिद के फर्श अज़ाब बिछता है वो जगह मेरे हरम का दर्जा रखती है। और आज 8 मुहर्रम को हम इमाम हुसैन के हरम के 8वें दरवाजे से दाखिल होकर इस हरम इमाम में बैठे हैं। 8वां दरवाजा, 8वें दरवाजे का नाम है बाबे सुल्तानिया। बाबे सुल्तानिया ये नाम क्यों रखा गया? कहा एक तुर्क सुल्तान था मुराद चहरुम, उसने ये दरवाजा तामीर करवाया था, उसके नाम पे इसका नाम है बाबे सुल्तानिया। और इस दरवाजे के ऊपर लिखा है अस्सलाम वालेका या अमीन अल्लाह वब्न अमीन ही। अमीन अल्लाह मौला अली का लकब है, मौला अली का रिवॉर्ड है ये। और आप लोग पढ़ते हैं ज़ियारत अमीन अल्लाह, जैसे इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए हम ज़ियारत वारसा पढ़ते हैं, ऐसे मौलाए कायनात के लिए हम ज़ियारत अमीन अल्लाह पढ़ते हैं। बहुत अजर व सवाब है, हत्ता के उलमा कहते हैं किसी और इमाम के हरम में भी जाओ तो ये ज़ियारत अमीन अल्लाह पढ़ सकते हो। और उस दरवाजे पे तहरीर है अस्सलाम वालेका या अमीन अल्लाह वबना अमीन ही। क्या तर्जुमा हुआ? या मौलाए कायनात और आपके बेटे वबना अमीन ही, और आपके बेटे आप अल्लाह के अमानतदार, आपका बेटा भी अल्लाह का अमानतदार, आप पर हमारा सलाम। ये तहरीर लिखा है। और हुसैन इब्ने अली कैसे अमानतदार हैं? हुसैन इब्ने अली की एक अमानत हमारे पास भी है, ये अज़दारी इमाम, ये मोहब्बत हुसैन जो हमारे माँ बाप ने हमारे कल्ब तक पहुंचाई, ये अमानत है हुसैन की, ये अज़दारी हमारी जिम्मेदारी है। इस अमानत में खयानत किए बगैर ये अमानत हम अपने बच्चों को, बच्चों के बच्चों तक पहुंचाएं। जिस तरह हमें ये अमानत दी गई हम उसी तरह ये अमानत अपनी नस्लों में पहुंचाएं। और जो भी ये अज़ा का फर्श दिखाता है या सदारी इमाम हुसैन की अमानत है। किताबों में रिवायत है, किताब है फजाइल व करामात इमाम हुसैन, उसमें रिवायत है कि बसरा में रहने वाली एक औरत अपने घर मुहर्रम का पहला अशरा करती थी। उसके शौहर की मुलाजमत खत्म हो गई, गुर्बत आ गई। اب جب غربت آ گئی محرم کا چاند نکلا پریشان ہے، کل سے لوگ میرے گھر پہ آئیں گے، عشرہ ہوتا ہے مگر میرے گھر میں تو تبرک دینے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے، میں کیا کروں، یہ عزاداری کا فرش کیسے بچھاؤں، بہت پریشان ہے۔ ایک بارگی اپنے شوہر سے کہا گھر سے باہر جائیں اور کچھ کوشش کریں، اللہ کچھ دے دے کہ میں حسین کی عزا کا فرش بچھا سکوں۔ شوہر گھر سے باہر گیا محنت مزدوری کے لیے، محلے میں ایک اور گھر میں مجلس تھی، وہ مجلس سے چلی گئی۔ اور میں آپ سے روزانہ کہتی ہوں، جب گھر میں مجلس میں وہ گئی ہے، مصائب ہوئے تو رونا شروع کیا، اور یہ رونا اتنا قیمتی ہے کہ امام زمانہ کہتے ہیں جب میرے جد حسین پہ رویا کرو، آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو میرے ظہور کی دعا مانگا کرو۔ یعنی اگر بہتے ہوئے آنسو میں آپ نے جو بھی حاجت مانگی، جو بھی حاجت، اپنی مغفرت، اولاد کی تربیت، کسی چیز کے لیے بھی، وہ حاجت قبول ہوگی۔ تو اب وہ مجلس میں رو رہی تھی اور روتے روتے کہتی ہے، بار الہ مجھے اتنا عطا کر دے کہ کم از کم میں اپنے گھر میں آنے والے عزاداروں کو تبرک امام حسین تو دے سکوں۔ روتے ہوئے دعا کرتی ہے، مجلس ختم ہوگی، اپنے گھر آئی، مگر جب گھر کے دروازے پہ پہنچی تو دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حیران، میں تو دروازہ بند کر گئی تھی، دروازہ کھلا کیسے؟ گھر کے اندر آئی تو دیکھا چار خواتین بیٹھی ہیں، اور کوئی فرش بچھا رہا ہے، کوئی تبرک کا انتظام کر رہا ہے، کوئی یعنی عزا کے فرش کی تیاری کر رہے ہیں۔ پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ تو آنے والوں نے تعارف کروایا۔ پہلی خاتون کہتی ہیں میں مادر عیسیٰ بی بی مریم ہوں، دوسری خاتون کہتی ہیں میں زوجہ آدم حوا ہوں، تیسری خاتون کہتی ہیں میں مادر اسماعیل ہاجرہ ہوں، اور چوتھی خاتون کہتی ہیں میں ختیجۃ الکبریٰ ہوں۔ کہتی ہیں تم نے مجلس سے دعا مانگی تھی نا ابھی کہ بار الہ اتنا دے دے کہ عزا کا فرش بچھاؤں، کیونکہ تم نے مانگا تھا ہم تمہارے گھر آ گئے، جو حسین کا فرش عزا بچھا دے اس کی مدد ہم کرتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ جو اس کا عزا خانہ ہے، عزا خانے میں چھوٹی سی زری رکھی تھی، اس زری کے پاس ہاتھ رکھے خاتون سیاہ پوش زارو قطار رو رہی ہیں۔ پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ اس خاتون نے کہا میں حسین کی ماں فاطمہ زہرا ہوں، اور ہم پانچوں خواتین اس لیے آئے ہیں تاکہ تمہارے گھر میں عزا کا فرش بچھا دے، تبرک کا اہتمام کر دے، میرے لال کے عزادار آئیں گے تو یہاں مجلس ہو سکے۔ جیسے اس نے سنا، وہ عورت حیران و پریشان گر کے بے ہوش ہو جاتی ہے، اور جب آپ کھلتی تو پانچوں خواتین جا چکی ہوتی ہیں۔ یعنی حسین ابن علی کی یہ امانت اس عزاداری امام کی حفاظت کرنی ہے، اور مولا خود مددگار ہوتے ہیں اس عزاداری میں۔ وقت مختصر ہے مگر مجھے ایک جملہ یاد آ گیا، میں نے ایک عالم کی مجلس میں ایک واقعہ سنا تھا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ سعودی عرب میں ایک سال ایسا آیا کہ عزاداری پابندی لگ گئی، کوئی شیعہ مجلس نہیں کرے، خطیب کے علاقے میں جہاں شیعہ رہتے ہیں کوئی مجلس نہیں ہوگی، اب لوگ پریشان ہیں، اگر مجلس کریں گے تو پولیس حملہ کر دے گی، اٹھا کے لے جائے گی، گرفتار کر دے گی۔ ایک شخص کے یہاں برسوں سے عشرہ ہو رہا تھا، بڑا پریشان، ایک دم آدھی رات کا وقت ہوا، کسی نے دروازہ کٹکھٹایا، دروازہ کھولا، جو شخص دروازے پہ کھڑا تھا نا، وہ کپڑے ایسے نہیں پہنا تھا کہ اس کے علاقے کا ہے۔ کہا آپ کون؟ کہا میں سلمان فارسی ہوں، اور گھوڑے پہ سوار وہ مولائے کائنات ہیں، مولا کہہ رہے ہیں تم فرش عزا بچھاؤ، حفاظت ہم کریں گے۔ سلوات بھیجیے بابا سے۔ اس فرش عزا پہ آ کر میں اور آپ قرآن سے استفادہ کر رہے ہیں، سورہ زلزال پہ ہماری اور آپ کی گفتگو ہو رہی ہے، آج سورہ زلزال کی ساتویں آیت، کل آٹھ آیتیں ہیں، آج ساتویں آیت، اور ارشاد رب العزت ہوتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، کوئی اگر ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا تو میدان قیامت پہ خدا اسے حاضر کر دے گا حساب و کتاب کے وقت، کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر خدا دیکھ بھی رہا ہے اور میدان قیامت میں اسے حاضر بھی کر دے گا۔ اچھا، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے ذرے کے برابر، کتنی بڑی، کتنی بڑی، کتنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی، کون سی، کیا یونٹ ہے، कि इतनी छोटी भी नेकी करोगे तो खुदा मैदान क़यामत में हाजिर कर देगा। कुरान पाक में सूरह लुकमान और सूरह लुकमान की आयत नंबर 16, हजरत लुकमान अपने बच्चे से कह रहे थे, अपने बेटे से कह रहे थे, बेटा अगर कोई राई के दाने के बराबर भी नेकी करेगा या बुराई करेगा तो खुदा उसे मैदान क़यामत में सामने ले आएगा और हिसाबो किताब में उसको शामिल करेगा। तो पता क्या चला, राई के दाना कितना छोटा होता है, आपके हाथ से आप डालिए, इंतहाई छोटा जर्रा। तो कहा मासूम ने, अगर कोई इतनी छोटी भी नेकी करेगा तो खुदा उसको मैदान क़यामत में इसका अजर देगा, राई के बराबर भी नेकी। अच्छा, लेकिन मैं और आप हर नेकी को अहमियत, हम छोटी छोटी नेकियों को अहमियत नहीं देते। उससे पहले मैं रसूल की एक रिवायत पढ़ दूं, फिर गुफ्तगू तमाम। रसूल खत्मी मर्तबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा। रसूल इस्लाम के पास एक आदमी आया और आके कहता है, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने जो आपको कुरान अता किया है उसमें से कुछ मुझे भी सिखाए। रसूल अल्लाह ने अपने सहाबी से कहा, इसको कुरान का सूरा याद कराओ। साहबी ने उसका हाथ पकड़ के बिठाया और सूरह जिलजाल पढ़ाने लगा, यही जिससे हमारी आपकी गुफ्तगू हो रही है, सूरह जिलजाल पढ़ाने लगा। जैसे ही वो सातवीं आयत पर पहुंचा, फमई या अमल मिसकाला जर्रतिन खैरिन यरा, एकदम खड़ा हो गया। कहा, खड़े क्यों हो गए, अभी सूरह मुकम्मल नहीं हुआ है। कहा, नहीं, मेरे लिए तो ये आयत ही काफी है, जब अल्लाह जर्रे के बराबर भी अमल नहीं छोड़ेगा और मैदान क़यामत पे हाजिर कर देगा, मेरे लिए ये आयत काफी है। जब वो जाने लगा, लोगों ने रोकना चाहा, तो रसूल कहते, छोड़ दो, ये फकीह होके जा रहा है, फकीह होके पलट रहा है, आलिम होके पलट रहा है, जो ये इस बात का यकीन कर ले कि छोटी से छोटी नेकी दुनिया ने देखी हो ना देखी हो, हमारी नजर में उसकी कोई हैसियत हो ना हो, मगर खुदा मैदान क़यामत में हाजिर कर देगा। कल मैंने आपके सामने कहा था, लोगों ने हजरत बहजत से सवाल किया, आका बहजत हम क्या करें, हमारा हमारे इमाम से तवस्सुल मजबूत हो जाए, हमारे इमाम की नजर करम हम पर हो जाए। तो आका बहजत ने तीन बातें कही थी। पहली चीज, रो रो कर इमाम के जहूर की दुआ करो। दूसरी चीज, इमाम जमाना को रोजाना सलवात पढ़कर हदिया करो। और तीसरी चीज, जब अल्लाह तौफीक दे तो बार बार मस्जिद जमकरान जाओ। पहली चीज पर मैंने कल गुफ्तगू कर ली, किस तरह इमाम के लिए रो के दुआ करनी है जरूर। दूसरी चीज, मैं और आप सलवात को इतनी अहमियत नहीं देते। मैं तो मिंबर से पढ़ती हूँ, मुझे मालूम है, बहुत जगह पे जाती हूँ पढ़ने, और कुछ जगहों पे ऐसी धीमी आवाज में सलवात पढ़ी जा रही होती है कि हमें बार बार कहना पड़ता है, ऐसी तो सलवात पढ़ो, मलाइका भी है, मलाइका जब अर्श पे जाए तो कहें हुसैनियों के मजलिस से आ रहे हैं। ऐसी और ये सलवात इतनी बड़ी इबादत है। जब लोग आकाए बहजत से कहते थे ये परेशानी है, ये परेशानी है, तो आकाए बहजत कहते थे सलवात का सैलाब बहा दो, कसरत से सलवात पढ़ो, तुम्हारी मुसीबत सलवात के सैलाब में बह जाएगी। ये भी कोई दुआ पढ़नी नहीं आती, मगर हमें यकीन नहीं है। हम कहते हैं मौलाना कोई बड़ी दुआ बताएंगे, कोई बड़ा तावीज देंगे तो असर होगा, नहीं, इस सलवात में इतनी ताकत है, कोई हाजत दरपेश सलवात पढ़ना शुरू कर दे। और आयतुल्लाह बहजत कहती है कि रोजाना सलवात पढ़ो और इमाम को हदिया पेश करो, इमाम की नजरे करम तुम पे होगी। अच्छा, अदद नहीं बताया, अदद नहीं बताया। जब मैंने किताबों को खोला, छठे इमाम सादिके आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम, छठे इमाम की रिवायत है, जो सुबह नमाज फजर के बाद और नमाज जोहर के बाद इमाम जमाना पे सलवात पढ़ेगा और किस तरह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम, जो इस तरह इमाम जमाना पे सलवात पढ़ेगा वो अपने मरने से पहले इमाम जमान की जियारत पाएगा, और जियारत पाएगा। और इमाम ने अदद नहीं बताया, एक तस्बीह 15 दफा, 14 दफा, कितनी दफा, क्यों क्यों नहीं बताया? अदद सबके हालात मुख्तलिफ हैं। कोई शौक इबादत रखता हो, किसी के पास जिंदगी में वक्त हो तो वो हजार मरतबे पढ़ लेगा, किसी के पास कोई जॉब करता है, बच्चे छोटे हैं, वक्त नहीं है, 14 मरतबा तो पढ़ सकते हैं ना, 5 मरतबा तो पढ़ सकते हैं ना। इसलिए मौला ने अदद नहीं बताया, जितना पढ़ सकते हो। क्या हमारे पास 24 घंटे में एक तस्बीह दुरूद की पढ़ने का वक्त नहीं है? किसी नमाज के बाद, किसी फुर्सत के बाद एक तस्बीह दुरूद की पढ़ के इमाम जमान को हदिया करे, ताकि जब इमाम को हदिया भेजते रहेंगे इमाम की नजरे करम में रहेंगे, और अल्लाह करे ये एक तस्बीह बढ़ते बढ़ते हजार तक पहुंचे, कि हम रोज इमाम जमान को दुरूद पढ़ के हदिया करें। तो आपने देखा, इमाम से राब्ते को मजबूत करना है, सलवात पढ़े। और सलवात इतनी अहम है, हमें क्योंकि यकीन नहीं है ना, जब तक कोई बड़ी दुआ ना पढ़े तो दुआ कैसे कबूल होगी। एक औरत आई, रसूल खत्मी मर्तबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा, मजलिस की आखिरी रिवायत, एक औरत आई रसूल खुदा के पास, आकर कहती है मेरा बच्चा नाबीना है, मेरा बच्चा देख नहीं सकता, अल्लाह के रसूल कोई अमल बता दीजिए कि मेरा मेरे बच्चे की बिनाई बहाल हो जाए। रसूलुल्लाह ने कहा जाओ मुझ पर कसरत से सलवात पढ़ा करो। अभी रसूल के घर से निकली, रसूल के घर से अपने घर तक जब जाने लगी तो हर कदम पे पढ़ती थी अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, हर हर कदम पे पढ़ती पढ़ती। जब वो अपने घर में दाखिल हुई तो देखा वो बच्चा जो नाबीना था उसकी बिनाई बहाल हो चुकी है। सलवात पढ़ दीजिए बाबा जी। हमारे पास ईमान तो है, यकीन नहीं है। अपने ईमान को यकीन की मंजिल तक लाइए, जब कह दिया है तो जरूर सलवात के सबब हमारी हाजतें पूरी होंगी। आज बाबुल हवाइज के मसाइब हैं, बाबुल हवाइज हाजतों का दरवाजा, मौला अब्बास हाजतें पूरी कर देते हैं, टूटे हुए दिलों की आसें। मुतवक्किल मलाऊन का जमाना था, उसने इमाम हुसैन की जियारत पे पाबंदी लगा दी थी, जो जाएगा या तो एक हाथ कटा के जाए या पैर कटा के जाए या एक इंसान को मार देंगे दूसरा जाए। और एक वक्त ऐसा है कि उसने बिल्कुल पाबंदी लगा दी। जब मुतवक्किल ने पाबंदी इमाम हुसैन की जियारत पे लगा दी, वहीं बसरे में एक शख्स रहता था नौजवान, उसकी माँ एक रोज रो रही थी। कहा अम्मा क्यों रो रही हैं? कहा बेटा जिंदगी खत्म हो रही है, मुझे इमाम हुसैन की जियारत के लिए ले चलो। अब बेटे ने ये नहीं कहा कि अम्मा ये क्या बात है, मुतवक्किल ने तो जियारत पे पाबंदी लगा दी है। कहा अच्छा अम्मा मैं आपको लेके चलूंगा। माँ नाबीना थी, माँ को हाथ पकड़ के चला के नहीं ले जा सकता था, पत्थर आ गया नजर आता नहीं, टकरा गया गिर जाएगी मेरी माँ। क्या किया, माँ को कंधों पे सवार किया, और माँ नाबीना है चला पैदल, अम्मा मैं तुझे लेके चलूंगा इमाम हुसैन के रोजे तक। पैदल चलते चलते जब जसरे बगदाद पर पहुंचे, बगदाद के पुल पर पहुंचे, तो एक मरतबा कुछ सिपाही बैठे हुए थे। सिपाही पूछते कहाँ जा रहे हो, और उस जवान ने कह दिया मैं हुसैन के रोजे की जियारत को जा रहा हूँ, अपनी माँ को जियारत के लिए जा रहा हूँ। वो सिपाही कहते तुमको पता नहीं है मुतवक्किल ने पाबंदी लगाई है। सिपाही ने उसकी माँ को कंधे से उतारा, लड़के के हाथ पैर बांह बांधे और पुल के ऊपर से उसने दरिया में फेंक दिया, और उसकी माँ को घसीटते हुए लेके आए नीचे दरिया के किनारे। एक सिपाही कहता है इसको भी कत्ल कर दो, ये भी शिया है। कहा नहीं, ये तो अपने बच्चे के गम में रोते रोते मर जाएगी। छोड़ दिया, छोड़ के चले गए। अब वो मोमिना जो हुसैन की ज़ियारत के लिए बेचैन थी, नजर नहीं आता, एक मरतबा हाथ बुलंद किए, बारे लहा तुझे बाबुल हवाइज का वास्ता, मौला अबुल फजल अब्बास मेरे बेटे जैसे कितने ही बेटे होते मैं आप पे कुर्बान कर देती, मौला बेटा नहीं मांग रही, मौला इतनी मदद कर दो हुसैन के रोजे में पहुंचा दो। असदारों कभी कभी असदार कहते हैं ना, बस एक दफा जियारत कराए काफी है, मौला बस एक दफा नहीं, मौला जिंदगी के हर साल में करबला की जियारत हो। जब आप करबला जाएंगे आपका दिल तड़पेगा। तो बेटा बेटा को गिरा दिया गया, और माँ कहती है मौला हर बेटा कुर्बान कर देती, एक ही बेटा था कुर्बान, बेटा नहीं मांगूंगी, बाबुल हवाइज मुझे करबला पहुंचा दीजिए।
रोती रही कुछ देर बाद अपने बेटे की आवाज सुनी। बेटा कहता है, अम्मा चलो मैं आपको ले चलूं। कहा, बेटा तुझे तो गिरा दिया था, तू तो मर गया होगा, तू जिंदा कैसे? कहा, अम्मा मुझे बाबुल हवाई से बचा लिया। माँ कहती है, मुझे बाबुल हवाई के पास ले चलो, मैं मौला के हाथों को बसा लूंगी। कहा, अम्मा सामने खड़े है बाबुल हवाई। माँ सर झुका के कहती है, मौला मुझे नजर नहीं आता, अपना हाथ आगे बढ़ाए, मैं आपके हाथों का बोसा लेना चाहती हूँ। खामोशी है। फिर माँ ने कहा, मौला हाथ बढ़ा दीजिए, हाथों का बोसा लेने चाहती हूँ। फिर खामोशी है। तीसरी मर्तबा मौला पास कहते हैं, ए मोमिना अगर मेरे बाजू होते सकीना के गोशवारे रचते, अगर मेरे बाजू होते जैनब की रिदाना चिंती। अजदारो आज अब्बास का पुरसा देना है, हर आंख से आंसू बहेगा, आज जहरा को अबुल फजल अब्बास का पुरसा देना है। शबे आशूर आई, मौला अब्बास इमाम हुसैन के साथ साथ है, कभी खैमे हुए हैं, कभी मुसल्ले पर हैं, कभी दोस्तों के दरमियान है, कभी मख्तले करबला का जायजा ले रहे हैं। अब्बास साए की तरह हुसैन के साथ हैं। एक मर्तबा शबे आशूर एक खैमे से रोने की आवाजें बुलंद थी, मौला अब्बास और इमाम हुसैन खैमे में गए, देखा उम्मे कुलसूम का खैमा है, उम्मे कुलसूम जारो कतार रो रही हैं। मौला अब्बास हाथों को जोड़ के कहते हैं, शहजादी रो क्यों रही हैं? कहा, भैया तुम तो देख रहे हो, हर माँ अपने बच्चे को तैयार कर रही है, और मैं वो बदनसीब हूँ, मेरी औलाद नहीं है, कल मैं अपने भाई पे किसको फिदा करूंगी, ये सोच कर रो रही हूँ। मौला अब्बास कहते, शहजादी परेशान ना हो, जब कुर्बानी का वक्त आएगा मुझे बुलाइएगा, आपकी तरफ से मैं कुर्बानी दूंगा। अजदारों हम कहते हैं ना, मौला अब्बास टूटे दिलों का सहारा है, बीबी कुलसूम का दिल टूटा हुआ था, अब्बास अलमदार ने संभाल लिया, आज भी हम अलम का फरेरा पकड़ के अपने दिल का हाल सुनाते हैं, दिल से आवाज आती है, अब्बास ने सुन लिया, अब्बास बाबुल हवाइज है। अज़दारो आशूर का दिन आ गया, मौला अब्बास बार बार जाते हैं, आका मुझे मखसल में जाने की इजाजत दीजिए, और मौला हुसैन कहते हैं, अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, अगर अलमदार चला गया तो लश्कर का क्या होगा। बार बार आते हैं मौला अब्बास, बार बार मौला हुसैन ये कहते हैं। असरे आशूर आ गई, अब अब्बास अलमदार गए, अब इजाजत मांगने का अंदाज बदल गया, अब तक कहते थे मौला मख्तल में जाने की इजाजत दीजिए, अब कहते हैं अब्बास मौला हुसैन मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। मौला जिनको गोद में खिलाया था उनके लाशें उठा के ले आया। एक बार की फिर मौला हुसैन कहते हैं, अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, अब्बास तुम्हें कैसे भेज दूं? मौला अब्बास दाएं तरफ देखते हैं, बाई तरफ देखते हैं, कहा मौला वो लश्कर कहाँ है? मैं जिसका अलमदार था वो लश्कर कहाँ है? एक बार की मौला हुसैन कहते हैं, तुम मेरे बाबा की निशानी हो। अब्बास खैमे से बाहर आ गए, आंखों में आंसू हैं। एक बार की सकीना की आवाज कानों में आई, अलताश अलताश हाय प्यास। अब्बास अलमदार सकीना के खैमे में आए, देखा छोटे छोटे बच्चे तीन दिन के प्यासे बैठे हैं। सकीना करीब आई, कहती चचा अब्बास ये जो बच्चे हैं ना छोटे छोटे, ये मुझसे कहते हैं अगर तुम्हारे चचा चले गए तो पानी जरूर आएगा। बच्चों को यकीन है, सकीना अगर तुम्हारे चचा चले गए पानी लेने तो पानी जरूर आएगा। मौला अब्बास ने सकीना को उठाया, का सकीना तुमने मेरी मुश्किल को हल कर दिया, मश्क सकीना मांगी, कंधे पे लटकाई, आज भी अब्बास का आलम जहां होता है अब्बास के आलम पे मश्क सकीना लटकती है। سکینہ کو لے کے مولا حسین کے حرم میں خیمے میں آئے. جیسے مولا حسین کے خیمے میں آئے تو مولا حسین سکینہ سے کہتے ہیں، سکینہ سفارش کرنے آئی ہو، چچا کو بھیج دوں، مگر بیٹا جب کانوں سے گوشوارے چنیں گے، جب رخسار پہ تماچے پڑیں گے، چچا بہت یاد آئیں گے سکینہ. مولا عباس سے کہا، جاؤ عباس، میں نے اجازت دی، جاؤ بچوں کے لیے پانی کا بندوبست کر لو. مولا عباس پلٹتے ہیں، کہا عباس اپنی تلوار دے دو، تمہیں لڑنے نہیں بھیج رہا، صرف پانی لانے بھیج رہا ہوں. مولا عباس کی تلوار آقا حسین نے رکھ لی. عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے، روایتوں میں لکھا ہے نہر فرات پر عمر سعد ملعون نے 4000 تیر اندازوں کا پہرا لگایا تھا، اور عباس جا رہے ہیں. کیا جلالت ہے عباس کی، عباس جا رہے ہیں، ایک بار کی عباس علمدار نے 4000 پہرا داروں کا پہرا توڑا، نہر فرات پہ اترے، مشک بھری، چلوں میں پانی لیا. جو شخص 3 دن کا پیاسا ہو وہ تو پانی لے کے پیے گا، مگر عباس نے وہ چلو بھر پانی دریا پہ پھینک دیا، اس لیے کہ سکینہ پیاسی ہے، اس لیے کہ علی اصغر پیاسے ہیں. عباس تمہاری وفا کو ہم سب کا سلام. مش بھر کے پلٹے، لشکر عظیم میں ہلچل ہے. عمر سعد کہتا ہے یہ پانی خانے میں پہنچنے نہ پائے، اگر یہ پانی پہنچ گیا تو ہم حسین سے لڑ نہیں سکیں گے. حرملہ کو بلایا، حرملہ تیر چلا، یہ پانی خیمے میں نہیں پہنچنا چاہیے. 30,000 لوگوں نے، 30,000 لشکر عزیز نے عباس کو گھیر لیا. ایک شقی نے بڑھ کے دائیں بازو قلم کیا، عباس گھوڑا دوڑا رہے، بازو قلم ہوتا ہے ہو جائے، پانی خیمے تک پہنچ جائے. دوسرا بازو قلم ہو گیا، عباس کو پرواہ نہیں، پانی خیمے تک پہنچ جائے. حرملہ نے تیر جوڑا، حرملہ کہتا ہے میں سوچ رہا تھا کیا کروں، یہ آدمی تو تیروں میں چنا ہوا ہے، اتنے تیر لگے ہوئے مگر رفتار کم نہیں ہو رہی، میرا ایک تیر کیا کر لے گا. حرملہ ملعون عباس علمدار کو دیکھتا رہا، دیکھا عباس کچھ پڑھ کر مشق پہ دم کر رہے ہیں. حرملہ سمجھ گیا اس شیر کی جان اس پانی کی مشق میں ہے، مشق کا نشانہ لیا، تیر چلا، مشق پہ لگا، پانی بہا، عباس کی ہمت ٹوٹ گئی، عباس نے گھوڑا روک دیا، ایک تیر آ کے عباس کی آنکھ میں لگا. عزدارو آنکھ پر کچھ لگ جائے تو ہاتھ سے نکالتے ہیں، عباس کے دونوں بازو نہیں ہے، تیر لگا ہے، کیسے نکالے؟ عباس نے دونوں ٹانگوں کے درمیان جھکے، چاہ کے تیر کو پاؤں سے کھینچ لے، جیسے ہی سر جھکایا کسی نے لوہے کا گرد مارا، لوہے کا گرز مارا. اب جو عباس گرے ہیں، کوئی گھوڑے سے گرتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، عباس گھوڑے سے کیسے گرے؟ عزدارو مدینے میں جب بی بی ام البنین نے سنا عباس مارے گئے تو بی بی کہتی ہے میرا شیر کیسے مارا گیا، بی بی ام البنین کہتی ہے میرا شیر کیسے مارا گیا. کسی نے کہا بی بی سر پہ گرز لگا تھا، کہا تم نے دیکھا ہے، میں نے عباس کو پالا ہے، میرا عباس وہ شیر ہے، فضا میں اڑتا ہوا گرز پکڑ کے توڑ دیا کرتا تھا. ارے ایک گرز سے خود کو بچا نہ سکا، ایک گرز نہ پکڑ سکا، ندا دینے والے نے کہا بی بی کیسے پکڑتا، بازو نہیں تھے. ام البنین کھڑے پر سے گر گئے. میرا بیٹا جب گھوڑے سے گرا ہوگا تو کس کا سہارا لیا ہوگا؟ عباس گھوڑے سے گرے, مولا حسین عباس کے پاس پہنچے, ایک بار کی عباس کا سر رکھا اپنے پہلو پہ. مولا عباس کہتے آقا آنکھوں میں تیر لگا ہے, دوسری آنکھ میں خون جمع ہے, مولا زحمت نہ دیتا, میری آنکھ سے خون صاف کر دیں. پیدا ہوا تھا سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی, مرتے ہوئے بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. مولا حسین نے آنکھ کا خون صاف کر دیا, مولا عباس نے حسین کی زیارت کی. بارہلا عباس کی اس آخری زیارت کا وقت جو تڑپ رہا ہے کربلا کے لیے, اس کو اس زیارت کے صدقے میں کربلا کی زیارت عطا کر. اور مولا حسین کہتے ہیں میرا گھوڑا, مولا حسین سے کہا آقا میرا لاشا نہیں لے جائیے گا خیمے, میرا لاشا خیمے میں نہیں لے جائیے گا, میں شرمندہ ہوں, پانی نہیں پہنچا سکا. روح پرواز کر گئی. مولا حسین اٹھے, عباس کا علم لیا, خیموں میں آئے, سہنے خیمہ میں علم گاڑ دیا. آج تک امام مارکا کے باہر علم گڑے ہوتے ہیں. مولا حسین کہتے بچوں علم آ گیا, علمدار نہیں آیا. ایک آخری مصیبت ایک جملے کی, آقا حسین بیان کرتے ہیں عباس علمدار کی شہادت کے بعد وہ لوگ جو عباس سے ڈرتے تھے جب عباس کی شہادت ہو گئی لشکر عزیز والے تلواریں لے کر آئے, سب تلواریں مار رہے تھے. سوئم کے دن جب لاشا اٹھا ہے چٹائی پہ رکھ کے لاشا اٹھا, چھوٹی سی قبر بنی عباس کی. بارہا عباس علمدار کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما لے, ہم سب کے دلوں میں حاجت دے, ہماری حاجتوں کو پورا کر دے. خدا امام زمان کے ظہور میں تاجل فرما دے. امام زمان جب ظہور فرمائے تو ہم سب لبیک کہنے والوں میں آ گئے. ماتم حسین علم آ رہے, زیارت کے لیے کھڑے ہو جائیے.